लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 12 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Ancora una volta ho avuto la gioia di battezzare alcuni bambini nella odierna festa del battesimo del Signore. Oggi erano 32.
Ek baar fir mujhe Prabhu ke baptisma ke parv par kuch bachchon ko baptisma dene ki khushi prapt hui hai. Prabhu ke baptisma ke parv par aaj ve 32 the. Hum unke tatha unke parivar ke liye prarthna karein. इस वर्ष का धम्मविधिक पाठ यीशु के बपतिस्मा की घटना को संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रस्तुत करता है। सुसमाचार लेखक यीशु और योहन बपतिस्ता के बीच वार्तालाप का वर्णन करते हैं, जिसमें यीशु बपतिस्मा देने का आग्रह करते हैं, जबकि योहन ने यह कहते हुए उन्हें इनकार करना और रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। वास्तव में मसीह को शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं थी, बदले में वे ही शुद्ध हुए। संत पापा ने कहा कि ईश्वर पौत्र हैं, उनके रास्ते हमारे समान नहीं हैं और यीशु ईश्वर के रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता जो अप्रत्याशित है। योहन ने घोषित किया था कि यीशु और उनके बीच एक बड़ी दूरी है। मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पौत्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे, किंतु ईश्वर के पुत्र इसलिए आए ताकि ईश्वर और मनुष्यों के बीच इस दूरी को भर दें। जब यीशु पूरी तरह ईश्वर हैं और पूरी तरह मानव, तो उनमें हर प्रकार का विभाजन भर चुका है। यही कारण है कि वे योहन को जवाब देते हैं,
Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia.
अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरा करें। मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लेने का आग्रह किया ताकि हर प्रकार की न्याय पूरी हो जाए जो पिता की योजना है, जिसमें कमजोर और पापी मानव के साथ पुत्र का आज्ञा पालन एवं एकात्मकता के रास्ते पर चलना है। यह विनम्रता का रास्ता है, ईश्वर का अपने बच्चों के साथ पूर्ण सामिप्य का। नबी इसायस भी ईश्वर के सेवक के न्याय की घोषणा करते हैं, जो अपना मिशन दुनिया में दुनिया के मनोभाव के विपरीत पूर्ण करेंगे।
Non griderà né alzerà il tono, dice il profeta.
यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरगंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। संत पापा ने कहा कि यही विनम्रता और दीनता का मनोभाव है, यही यीशु सिखलाते हैं अपनी विनम्रता द्वारा। उन्होंने कहा,
L'atteggiamento della semplicità, del rispetto, della moderazione, del nascondimento richiesto anche oggi ai discepoli del Signore.
कि इसी सरलता सम्मान संयम और समृद्धि की मांग आज भी प्रभु के शिष्यों से है. यह कहना खेदजनक है कि प्रभु के कितने शिष्य उनके शिष्य होने के कारण अकड़कर चलते हैं. संत पापा ने कहा कि एक शिष्य का अकड़कर चलना ठीक नहीं है. एक अच्छा शिष्य विनम्र और दीन होता है. वह दिखाए बगैर अच्छे कार्यों को पूरा करता है. मिशनरी कार्य में ख्रिस्त समुदाय दूसरों से मुलाकात करने हेतु बाहर निकलने के लिए बुलाया जाता है. वह साक्ष्य देने के लिए भेजा जाता है ताकि किसी प्रकार का दबाव डाले बिना लोगों के वास्तविक जीवन में शामिल हो पाए. जैसे ही यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया और पौत्र आत्मा का पौत के रूप में उनके ऊपर उतरा तथा एक आवाज सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ. संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
Nella festa del battesimo di Gesù riscopriamo il nostro battesimo.
यीशु के बपतिस्मा पर्व में हम हमारी बपतिस्मा पर गौर करें. जिस तरह यीशु पिता के प्रिय पुत्र हैं, हमारा जन्म भी जल और पौत्र आत्मा से हुआ है और हम जानते हैं कि हम भी पिता के प्रिय बेटे बेटियां हैं. पिता हम सभी को प्यार करते हैं. ईश्वर का आनंद है कई लोगों के भाई बनना, पिता के असीम प्रेम का साक्ष्य देना एवं घोषणा करने के महान मिशन के लिए समर्पित होना. यीशु का बपतिस्मा हमें अपनी बपतिस्मा की याद दिलाती है. हम भी बपतिस्मा में नया जन्म प्राप्त करते हैं. बपतिस्मा में पौत्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हम पर उतरता है. यही कारण है कि अपने बपतिस्मा की तिथि को याद रखना महत्वपूर्ण है. संत पापा ने कहा कि हम प्रायः अपने जन्म की तिथि को याद रखते हैं, किंतु बपतिस्मा की तिथि को याद नहीं करते. उन्होंने कहा कि निश्चय ही कुछ लोग होंगे जो अपने बपतिस्मा की तिथि को नहीं जानते हैं. संत पापा ने बपतिस्मा की तिथि की खोज करने की याद दिलाते हुए कहा, जब आप घर लौटेंगे तो पूछे कि मेरा बपतिस्मा कब हुआ था और अपने बपतिस्मा की तिथि को हर साल अपने हृदय में मनाएं. संत पापा ने ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु के प्रति न्याय करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. तत्पश्चात संत पापा ने प्रार्थना की कि संत मरियम बपतिस्मा के वरदान को अधिक से अधिक समझने और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उनके अनुकूल जीने में मदद दे. इतना करने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया.
Angelus Domini, nunciabit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने देश विदेश से एकत्रित सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया.
Rivolgo a tutti voi, cari romani e pellegrini, mio saluto cordiale.
खासकर उन्होंने परिवारों, पल्ली दलों, संगठनों और विश्वासियों का अभिवादन किया. उन्होंने कोलंबिया, ब्राजील, पराग्वे और कोरिया के पॉपुलारे मूवमेंट के युवाओं का अभिवादन किया जो प्रभु सेवक कियारा लुबिक के जन्म के 100 साल बाद एक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए रोम आए हैं. तब संत पापा ने टोरंटो के विश्वासियों एवं मदुरिया के आलमा गौदिया गायक दल का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
Auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वंदन तुझे आराधना हो सदा मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में अर्पित है तेरे चरणों में
प्रेमी पिता वंदन तुझे
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 13 जनवरी को वाटिकन में पाराग्वे के नए राजदूत श्री अल्फ्रेडो ओसवाल्डो से मुलाकात की और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्री अल्फ्रेडो ओसवाल्डो का जन्म 20 जून 1939 को असिनकॉन में हुआ। वे शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ असिनकॉन से वकालत की डिग्री हासिल की। उन्होंने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय और न्यू ओरलियंस के लोयोला विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वे AUDY कॉन्स्टेंसी निर्देशक मंडल और इगोर MA में वित्तीय प्रबंधक हैं। वे अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी, इतालवी और गुआरानी भाषाएं बोलते हैं और लंबे समय से चली आ रही परंपरा अनुसार संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को सिस्टीन प्रार्थनालय में प्रभु के बपतिस्मा के पर्व का पवित्र मिसा समारोह अनुष्ठान किया। इस दिन कलीसिया येसु के चचेरे भाई संत जॉन बपतिस्ता द्वारा यर्दन नदी में येसु को दिए गए बपतिस्मा की याद करती है। समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कर्मचारियों और राजनयिकों के परिवारों में पिछले वर्ष पैदा हुए 32 बच्चों को बपतिस्मा संस्कार दिया। बपतिस्मा समारोह से ठीक पहले अपने प्रवचन में संत पापा फ्रांसिस ने संत जॉन बपतिस्ता द्वारा पूछे जाने पर येसु के शब्दों को याद किया कि प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए उनके पास क्यों आ रहे हैं, जबकि उसे खुद येसु के पास बपतिस्मा लेने की जरूरत है। येसु कहते हैं, अब ऐसा ही होने दो, इस प्रकार यह हमारे न्याय को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। संत पापा ने कहा, बच्चे को बपतिस्मा देना एक न्याय का कार्य है, क्योंकि बपतिस्मा में हम उसे खजाने को देते हैं, हम उनके लिए पवित्र आत्मा की इच्छा करते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों को बपतिस्मा देना महत्वपूर्ण है ताकि वे पवित्र आत्मा की शक्ति में बड़े हों। संत पापा ने बच्चों के माता पिता से यह ध्यान रखने के लिए आग्रह किया कि बच्चे पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रकाश में बड़े हों। बच्चों को धर्म शिक्षा दी जाए और बच्चे अपने घरों में माता पिता एवं बड़ों के उदाहरण से सीखते हैं। संत पापा ने युवा परिवारों से कहा कि अगर उनके बच्चे समारोह के दौरान उपद्रव करते हैं तो वे चिंता ना करें। बच्चे सिस्टीन प्रार्थनालय में पहली बार आए हैं, नए परिवेश में अगर वे रोना शुरू करें, चुप कराने के बावजूद भी अगर वे रोना जारी रखते हैं तो भी आप चिंता ना करें। बच्चे गायक मंडली के समान है, अगर एक रोना शुरू करता है तो दूसरे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आप परेशान न होवे, जब बच्चा गिरजाघर में रोता है तो यह एक सुंदर घर बनता है। अंत में संत पापा ने कहा, यह न भूलें, आप बच्चों के भीतर पवित्र आत्मा को धारण करते हैं। इस अवसर पर संत पापा ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु के बपतिस्मा के पर्व पर हम अपने बपतिस्मा को पुनः याद करते हैं। जैसे येसु पिता के परम प्रिय पुत्र हैं, वैसे हम भी
पानी और पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जन्म लिया है और हम जानते हैं कि हम कई अन्य भाइयों और बहनों के बीच ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। और 13 जनवरी के ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, क्रिश्चिय जीवन में ईश्वर का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक हम खुद से बाहर नहीं निकलते और दूसरों से नहीं मिलते हैं, जब तक हम आराधना नहीं करते, तब तक हम ईश्वर को नहीं जान सकते। क्रिश्चिय जीवन ईश्वर के साथ एक प्रेम कहानी है। उधर ईरान ने स्वीकार किया है कि इस हफ्ते की शुरुआती में सेना ने गलती से एक यूक्रेन यात्री जेट को मार गिराया था। एक अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल के मारे जाने के तनाव में 176 लोगों की मौत हो गई। संत पापा फ्रांसिस और अन्य कई नेताओं ने रचनात्मक बातचीत और बढ़ती हिंसा की अस्वीकृति का आह्वान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि संकट के समय मानव त्रुटि अमेरिकी दुस्साहस के कारण था। उसने सभी पीड़ितों के परिवारों और प्रभावित अन्य लोगों से माफी मांगा है। ईरान ने कहा है कि मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ट्वीट कर कहा है कि मानवीय भूल के कारण यूक्रेन के यात्री विमान पर मिसाइल दागी गई और 176 बेगुनाहों की जान चली गई। कहां गलती हुई, इसकी शिनाख्त करने के लिए अभी जांच जारी है। इस भयावह त्रासदी के लिए जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस विनाशकारी गलती के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को घोर खेद है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। उधर नागरिकता कानून के खिलाफ 12 जनवरी को दिल्ली के शाहीन बाग में एक बहुविश्वास प्रार्थना समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न धर्मों के हजारों लोग एक साथ आए थे। अंतर विश्वास समारोह में पारंपरिक हिंदू शैली हवन और सिखों के मंत्र कीर्तन थे। प्रतिभागियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और अपनी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। गीता बाइबल कुरान से शास्त्र पढ़े गए और गुरबानी को आयोजित किया गया। तब संविधान की प्रस्तावना भी अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा पढ़ी गई, जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। विरोध आयोजकों में से एक सैयद तासीर अहमद ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, शाम तक हजारों की भीड़ उमड़ी। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और एक प्रस्तावित अखिल भारतीय नागरिक रजिस्टर NRC की वापसी के लिए उनके आंदोलन के रूप में महिलाओं बच्चों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी शाहीन बाग के सरिता विहार कालिंदी कुंज मार्ग पर बैठ गए। 13 जनवरी यानी आज उनके प्रदर्शन का एक महीने पूरा हो गया। गफ्फार मंजिल के 44 वर्षीय जुवैन अब्दीन ने CAA को निरस्त करने की मांग को लेकर 16 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और 2 सप्ताह बाद सरिता विहार के 40 वर्षीय मेरो निशा शामिल हो गए। इनके अलावा 3 बुजुर्ग महिलाएं भी वन डे के बाद से विरोध स्थल पर मुख्य मंच पर बैठी हुई हैं। संशोधित कानून के अनुसार धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्य जो 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं उन्हें गैर कानूनी अप्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता और पहली बार धर्म को नागरिकता का मापदंड बनाया गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।